दूसरी ओर जोर शोर से पार्टी की तैयारी शुरू हो गई थी। शहर के सबसे बड़े होटल से हर वैरायटी का खाना मंगवाया गया था। चाइनीज फूड, इटालियन, इंडियन, जितनी भी देश विदेश की फेमस डिशेस थीं वो सब वहां मौजूद थीं। आखिर अरमान ठाकुर की पार्टी जो थी, अरमान की पार्टी कितने ही दिनों तक सुर्खियों में रहती थी। अरमान के विदेशी दोस्त भी अपने अपने चॉपर से उस पार्टी में आने वाले थे। अरमान ने केवल अपने खास पार्टनर्स को ही बुलाया था। उसका बिजनेस देश विदेश हर जगह फैला हुआ था और इतनी बड़ी पार्टी रखने के पीछे उसका एक ही मकसद था, राजवीर को अपनी ताकत का एहसास कराना। अरमान को राजवीर पर थोड़ा सा शक था क्योंकि वो काफी ज्यादा क्लीन था, उसका किसी भी तरह का कोई लफड़ा नहीं था, बस यही बात उसे खाई जा रही थी। उसने सोचा क्यों ना एक बार अपनी ताकत का एहसास कराया जाए, अगर बाय चांस उसके मन में मुझे कभी चीट करने का ख्याल आए तो वो मेरा बैकग्राउंड अच्छे से देख ले, अरमान ने खतरनाक सी मुस्कान के साथ मन ही मन सोचा था। बस यही रीजन था उसने पार्टी अपने घर के गार्डन में रखी थी। तभी अरहम उसके पास आया। ब्रो, ये सब क्या हो रहा है और आपने गार्डन में पार्टी क्यों रखी है? आप अच्छे से जानते हैं ये कितना रिस्की हो सकता है। अगर जोया किसी तरह पार्टी में आ गई तो बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। ब्रो, मैं उसे अच्छे से जानता हूँ, वो हार मानने वालों में से नहीं है, अरहम ने फिक्रमंद होकर कहा। अरमान ने अरहम से कहा, रिलैक्स ब्रो, रिलैक्स, ये पार्टी हमारी ताकत दिखाने के लिए बेहद ज़रूरी थी और मैं इसे किसी होटल में नहीं कर सकता था। तुम तो जानते हो होटल में मीडिया का खतरा बना रहता है और अगर हमारे विदेशी पार्टनर मीडिया की हेडलाइन बन गए तो हमारे कितने ही इलीगल बिजनेस जो विदेश में चल रहे हैं उनकी पोल खुलते देर नहीं लगेगी और एक मामूली सी कमज़ोर लड़की के लिए मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता था। तुम अच्छे से जानते हो ठाकुर मैंशन से ज़्यादा सेफ और कोई जगह नहीं है, और रही बात छोटी मालकिन की तो मैं हूँ ना, मैं देख लूँगा उसको अच्छे से, अरमान ने एक खतरनाक स्माइल के साथ कहा। अरहम ने कहा, ओके ब्रो, अब आपका प्लान है तो ज़रूर अच्छा ही होगा, वैसे भी आज तक आपका कोई भी प्लान खराब नहीं हुआ है। अरमान ने कहा और बोला, तुम जाओ और जाकर देखो, पार्टी की तैयारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ओके ब्रो, मैं जाकर देखता हूँ। दूसरी ओर जोया नहा चुकी थी और उसने हल्के पिंक कलर का चूड़ीदार पजामा सूट पहना था। उसने अपने बाल अभी तौलिए में ही लपेटे हुए थे और वो बैठकर खाना खाने लगी जो सकीना भी रख कर गई थी। खाना ज्यादा ठंडा नहीं हुआ था। वो खाना खा ही रही थी कि तभी सकीना भी हाथ में कॉफी का मग लिए उसके पास आ गई। ओ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अम्मा, मेरा बड़ा दिल था कॉफी पीने का, जोया ने कहा। हाँ बेटा जी, मुझे पता था आप नहाने चली गई हो सो इसीलिए मैं कॉफ़ी ले आई, इससे आपको एनर्जी मिलेगी, सकीना बी ने कहा और जोया को कॉफ़ी देकर बाहर निकल गई। जोया ने खाना खाकर गर्मा गर्म कॉफ़ी पी। उसको काफ़ी दिन बाद अपने अंदर एक ताकत सी नज़र आई, या तो इसलिए कि कितने दिन बाद उसने पेट भरकर खाना खाया था और अच्छे से नहाकर सुंदर कपड़े पहने थे, और जोया ये बात अच्छे से समझ गई थी कि उन दोनों साइको को उसे तकलीफ़ में देखना पसंद है। अगर जोया खुश होती है तो उन दोनों को बेहद तकलीफ़ होती है, सो जोया ने उन्हें तकलीफ़ देने का मन बना लिया था। कॉफ़ी पीकर जोया ने अपने बाल तौलिए से आज़ाद किए। उसके बाल हल्के से सुनहरी, एकदम घने और लंबे थे। जोया धीरे धीरे तौलिए से बालों को सुखाने लगी। अभी वो बाल सुखा ही रही थी कि तभी अरमान उसके कमरे में आ गया। जोया का मुंह खिड़की की ओर था, अरमान ठीक उसके पीछे खड़ा था। जोया आराम से अपने बाल सुखाने में मग्न थी, उसे एहसास ही नहीं हुआ कि कमरे में कोई और भी है। अरमान एकटक उसे बाल सुखाते हुए देख रहा था। उसने सोचा था जाकर जोया को डराएगा, धमकाएगा, लेकिन उसको इतना फिट एंड ठीक देखकर उसका मन अंदर ही अंदर कुढ़ रहा था। उसका मन तो किया एक झटके से उसे सबक सिखाए, वो इतनी खुश कैसे रह सकती है। सो वो झटके से उसके पास गया। उसके पास जाकर वो उसका हाथ मरोड़ना चाहता था, लेकिन जैसे जैसे वो उसके करीब बढ़ रहा था वैसे वैसे एक हल्की सी धीमी धीमी खुशबू उसकी नाक में टकरा रही थी जो जोया के बदन की खुशबू थी। सो वो अपना होश सा खो बैठा और अरमान ने जोया को पीछे से गले लगा लिया। अचानक से किसी के छूने से जोया चिल्लाई और उसके हाथ से तौलिया गिर गया और उसके बाल सीधे अरमान के मुंह पर गिर गए। उसके बालों से अभी भी पानी टपक रहा था जो कि अब अरमान के मुंह पर गिर रहा था, और जैसे ही पानी की छींट उसके मुंह पर गिरी मानो वो किसी खूबसूरत ख्वाब से जागा हो। वो उससे अलग हटा और उसकी बाजू को कसकर पकड़ लिया और बोला, एक बात कान खोलकर सुन लो, ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करना, आज रात की पार्टी में जाने की सोचना भी मत, वरना तुम तो जानती हो कि हम तुम्हारा क्या हाल कर सकते हैं, अरमान ने सुलगते लहजे में कहा। उसने उसकी बाजू बहुत ही ज्यादा टाइट पकड़ी थी जिससे जोया की आंखों में दर्द उमड़ पड़ा था, लेकिन वो कुछ बोली नहीं। अरमान ज्यादा देर उसकी आंखों में नहीं देख पाया और वो उसको बेड पर धकेलता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। जोया बेड पर ऊंधे मुंह गिरी थी। जोया उठी और हल्का मुस्कुराने लगी और बोली, और कितना बुरा करोगे तुम दोनों, सारी हदें पार तो कर ही चुके हो, अब रह ही क्या गया है। अब नहीं, मैं तुम लोगों से नहीं डरती और आज की पार्टी को कैसे यादगार बनाती हूँ तुम दोनों के लिए, ये आज देखना तुम दोनों साइको, जोया ने एक जहरीली मुस्कान के साथ कहा और तैयार होने लगी।